ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए गंडकी प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने लिया संज्ञान। स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा निकाय के अधिकारियों को प्रधानमंत्री का निर्देश। चुनाव के लिए आवश्यक स्रोत की कमी न होने देने का अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल की प्रतिबद्धता। म्यागदी और मुस्तांग को जोड़ने वाली मालढूंगा बेनी सड़क का उन्नयन कार्य पूरा। और फिलीपींस में भारी वर्षा के बाद आए भूस्खलन में 7 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने का निर्देश किया है। मुस्तांग के जोमसोम स्थित नेपाली सेना के इंद्र बक्स गण में आज आयोजित निर्वाचन लक्षित चर्चा तथा अंतर्क्रिया कार्यक्रम में उन्होंने चुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने का निर्देश किया। ये जानकारी प्रमुख जिलाधिकारी अजिता शर्मा ने दी। प्रधानमंत्री कार्की को प्रमुख जिलाधिकारी शर्मा ने जिले की समग्र सुरक्षा स्थिति और निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार जिला मुख्य निर्वाचन अधिकृत विद्याराज पौडेल ने प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए अब तक हुई प्रगति की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। आज ही प्रधानमंत्री कार्की ने निर्वाचन के संबंध में गंडकी प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर भी जानकारी ली। अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल ने चुनाव के लिए आवश्यक स्रोत साधनों में कमी न होने देने की प्रतिबद्धता जताई है। आज ललितपुर में एक गोष्ठी के दौरान अर्थमंत्री खनाल ने कहा कि सरकार का ध्यान चुनाव को सफलता के साथ संपन्न करने पर केंद्रित है। ये कहते हुए कि ये समय आर्थिक विषय पर केंद्रित होने का है, उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता से सरकार को बाहर निकालने को ही सबसे बड़ी चुनौती बताया। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने अपने घोषणा पत्र आयोग में दर्ज कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने आज काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा सार्वजनिक किए गए घोषणा पत्र आयोग में जमा कराने का निर्देश किया है। आयोग की साप्ताहिक कार्य प्रगति सार्वजनिक करने के लिए बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग की सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीस ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से निर्वाचन आयोग के केंद्रीय कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालयों में घोषणा पत्र जमा कराने का आग्रह किया। आयोग के अनुसार अब तक कुल 41 दल अपने अपने घोषणा पत्र आयोग में प्रस्तुत कर चुके हैं। सहायक प्रवक्ता पुन ने बताया कि सुदूर पश्चिम कर्णाली और कोशी प्रदेश के जिलों में मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री की ढुआई हो चुकी है, जबकि अन्य प्रदेशों के जिलों में मतपत्र छोड़कर बाकी सामग्रियां पहुंच चुकी हैं और मतपत्र पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन आयोग ने बदर मतों की संख्या कम करने के लिए फागुन 3 गते से सभी पालिकाओं के वार्डों में स्वयंसेवक परिचालित कर निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया है। नमूना मतपत्र के माध्यम से मतदाताओं के बस्ती और घर घर जाकर मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। मतदाता शिक्षा के लिए 345 डिजिटल सामग्रियां तैयार कर आयोग के आधिकारिक फेसबुक पेज, एक्स, टिकटॉक और यूट्यूब पर भी डाली गई है। अब तक 867 उम्मीदवारों ने निर्वाचन खर्च के लिए आयोग द्वारा निर्धारित बैंक खाता खोला है, ये जानकारी भी निर्वाचन आयोग ने दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आप नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भंडारी ने कहा आसन्न चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयरहित वातावरण में संपन्न करने में सभी की ओर से सहयोग प्राप्त होगा, इस बात पर उन्हें पूरा भरोसा है। निर्वाचन आयोग और नेपाल कानून समाज द्वारा आज विराटनगर में आयोजित कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भंडारी ने यह बात कही। ये साफ करते हुए कि चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला चाहे कोई भी हो वो कार्यवाही का भागीदार होगा, उन्होंने सभी से विधि प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संयमित होकर चुनाव में सहभागी होने का अनुरोध भी किया। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि शिक्षा सिर्फ औपचारिक प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं होनी चाहिए। आज पोखरा विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि मौजूदा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार इल्म, रोजगारी, उद्यमशीलता और नव प्रवर्तन केंद्रित नैतिकवान जनशक्ति उत्पादित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कार्की विश्वविद्यालय की कुलपति भी हैं। पोखरा महानगरपालिका 30 खुदी ढूंगे पाटन में आज आयोजित 21वें दीक्षांत समारोह में पोखरा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले 6622 विद्यार्थी दीक्षित हुए। विश्वविद्यालय के सूचना अधिकारी लोक प्रसाद ढकाल के अनुसार विभिन्न स्तर और संकायों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले इन विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। व्यवस्थापन संकाय से 3625, विज्ञान तथा प्रविधि संकाय से 2506, स्वास्थ्य विज्ञान संकाय से 365 और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान संकाय से 126 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई। इस अवसर पर स्नातकोत्तर स्तर में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को कुलपति पदक और स्नातक स्तर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को उपकुलपति पदक प्रदान किया गया। म्यागदी और मुस्तांग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली मालढूंगा बेनी सड़क के उन्नयन का काम पूरा हो गया है। चीन और भारत को जोड़ने वाली राष्ट्रीय गौरव की काली गंडकी कॉरिडोर बेनी जोमसोम कोरला सड़क योजना के तहत मालढूंगा बेनी सड़क को 2 लेन का 11 मीटर चौड़ा बनाकर उन्नत किया गया है। परियोजना प्रमुख तेजस्वी शर्मा के अनुसार 52,86,00,000 रूपये की लागत से 13 किलोमीटर लंबी सड़क में 960 मीटर को छोड़कर बाकी हिस्सों में पिचिंग और ढलान का काम भी पूरा हो चुका है। मुस्तांग और कोरला नाका सड़क नेटवर्क से जुड़ने के बाद यातायात के साधनों का दबाव बढ़ने से ये सड़क हाल के वर्षों में जर्जर हो गई थी। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, शहरी विकास मंत्री प्राध्यापक डॉ कुमार इंगनाम और संघीय संसद के महासचिव पदम प्रसाद पांडे सहित अन्य पदाधिकारियों ने सिंहदरबार परिसर में निर्माणाधीन नए संघीय संसद भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष दाहाल ने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के बाद बैठक के लिए कोई अन्य विकल्प न होने के कारण हर हाल में निर्माण कार्य समय पर पूरा करने का आग्रह किया। मौके पर शहरी विकास मंत्री प्राध्यापक डॉ कुमार इंगनाम ने जानकारी दी कि आगामी चैत 1 अक्टूबर तक कम से कम प्रतिनिधि सभा कक्ष, सेंटर हॉल, लॉबी और कैंटीन को हस्तांतरित करने के लक्ष्य के साथ तीव्र गति से फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। नया बानेश्वर स्थित संसद भवन में भाद्र 23 और 24 गते के जेएनजी आंदोलन से क्षति पहुंचने के बाद चुनाव के बाद नई संसद बैठक निर्माणाधीन भवन से संचालित करने की योजना के तहत निर्माण का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। संघीय संसद के दोनों सदनों, संसदीय समितियों और संसदीय दलों के कार्यालयों सहित कुल 12 ब्लॉकों वाला नया संसद भवन निर्माण के अंतिम चरण में है। मिथिला मध्यमा परिक्रमा के यात्री 5वें दिन महोत्तरी के जलेश्वर पहुंच गए हैं। कल भारत के मधुबनी जिले के फुलहर से महोत्तरी के मटिहानी पहुंचे यात्री आज 5वें दिन रात्रि विश्राम के लिए जलेश्वर पहुंचे। 5वें दिन के विश्राम के लिए अपने नगर पहुंचे यात्रियों का जलेश्वर वासियों ने स्वागत किया। गत सोमवार से शुरू हुई इस यात्रा के यात्री कल 6ठे दिन मड़ई, 7वें दिन ध्रुवकुंड और 8वें दिन कंचनवन में रात्रि विश्राम करने के बाद 9वें दिन पुनः धनुषा में प्रवेश करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य आरोग्यता, कल्याण और मोक्ष प्राप्ति माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि त्रेता युग में श्रीराम और सीता जी के विवाह के बाद उन्होंने तत्कालीन मिथिला राज्य के विभिन्न स्थानों का वन विहार किया था, उसी स्मृति में मिथिला मध्यमा परिक्रमा की परंपरा चली आ रही है। 15 दिनों तक नेपाल और भारत में कुल 133 किलोमीटर की ये यात्रा की जाती है। इस परिक्रमा यात्रा में नेपाल और भारत के विभिन्न मठों के साधु संतों और आम श्रद्धालुओं की सहभागिता रहती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अधिकारियों ने आज बताया कि दक्षिणी फिलीपींस के दावाओ डे ओरो और दावाओ ओरिएंटल प्रांतों में भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। फिलीपीन रेडक्रॉस ने कहा कि उसने दावाओ डे ओरो प्रांत के मोनकायो शहर में प्रभावित इलाके से 3 लाशें बरामद की हैं। फिलीपीन रेडक्रॉस के प्रेसिडेंट और सीईओ रिचर्ड गॉर्डन ने सोशल मीडिया पर कहा कि अधिकारी स्थानीय लोगों की सुरक्षा पक्का करने के लिए प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। शहर के फायर स्टेशन ने सोशल मीडिया पर बताया कि शुक्रवार को दावाओ ओरिएंटल के माटी शहर में लैंडस्लाइड में एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। गॉर्डन ने कहा कि प्रभावित प्रांतों में रेडक्रॉस की ब्रांच लगातार मॉनिटरिंग और रैपिड रिस्पांस ऑपरेशन के साथ हाई अलर्ट पर हैं। सुरीगांव डेल सुर प्रांत के बिस्लिक शहर में पानी घुसने पर वॉलंटियर्स ने परिवारों को सुरक्षित इलाकों में ले जाने में मदद की थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए गंडकी प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रधानमंत्री सुशीला कार्के ने लिया संज्ञान। स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा निकाय के अधिकारियों को प्रधानमंत्री का निर्देश। चुनाव के लिए आवश्यक स्रोत की कमी न होने देने का अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल की प्रतिबद्धता। म्यागदीप मुस्तांग को जोड़ने वाली मालढूंगा बेनी सड़क का उन्नयन कार्य पूरा और फिलीपींस में भारी वर्षा के बाद आए भूस्खलन में 7 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।